તારીખ 24/3/1994 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા આગ્રામાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 20 મૂળ કેસેટમાં અવાજ ખરાબ છે.
हमारी बात मान ले और उपयोग इस ओर लगाए तो समय दशम हो जावे, परंतु भूतकाल में भी और वर्तमान में भी जिनका पुरुषार्थ इस ओर है उन्हें 6 माह से क्या अधिक समय हो जाने पर भी समय दशम होता नजर नहीं आ रहा है, सो क्या कारण है? समयक दर्शन के लिए यह कहा जाता है कि एक बार 6 महीने हमारा कहा मान ले, लेकिन क्या कहा कि उपयोग इस ओर लगाए तो समयक दर्शन हो जाए, तो 6 महीने में क्या उपयोग तो कभी भी अपनी ओर लगेगा तो समयक दर्शन होगा, फिर कैसे लगे ये सवाल है. समस्या तो वो है, लगाने चाहते हैं नहीं लगता है, इसका क्या कारण है कि भीतर में अनंत सुख भरा है उसकी पहचान नहीं आई और पहचान नहीं आने से उसका आकर्षण नहीं हुआ. उपयोग का खिंचाव सुख की ओर रहता है हमेशा, जहां सुख निर्धारित हो गया निश्चित हो गया वहां उपयोग स्वतः ही चला जाता है. तो जिसको अपना आत्मस्वरूप की पहचान हुई, लक्ष्य हुआ, निश्चय हुआ, उसको सुख का अनंत सुख का भी निश्चय हुआ, साथ साथ जगत के सुख का जो निर्धार था निश्चय था वो टूट गया. मैंने 6 महीने की बात लिखी है, इसके पहले 6 महीने वाली बात लागू नहीं होती है. तो बात तो सापेक्ष में अपेक्षित बात है कि जिसको आत्म सुख का निश्चय हुआ हो उसे 6 महीने के अंदर समय दर्शन होता है या उपयोग उस तरफ अंतर में जा सकता है. इसके पहले अंतर में उपयोग कोई इच्छा के कारण से चला जाए ऐसा तो नहीं बनता. जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, राग द्वेष किया करता जो परिणति होती जड़ के रही. ये भाव कर्म या भाव कर्म युग युग से करता आया हूं, ये अनुपम गंध अनवश्य प्रभु पर गंध जलाने आया हूं, इसका अर्थ स्पष्ट करें. तो वो तो बहुत साध्यात है कि जड़ कर्म आत्मा को घुमाता है ऐसी बात नहीं है. आत्मा स्वयं पराधीन होता है कर्म के उदय, तभी आरोप किया जाता है. आरोप आरोप है, सही बात नहीं है. फिर सही मान ले तो ये भ्रांति है और इस भ्रांति के वश में राग द्वेष किया करता हूं और जड़ जैसी जड़ के प्रति हमारी परिणति हो जाती है. पूजा के पद है ये भाव कर्म या भाव मरण योग से करता आया हूं. इस प्रकार से ये भाव कर्म राग द्वेष हो रहा है उसमें अपने आत्मा के ज्ञान और आनंद प्राण का खून होता है, इसलिए भाव मरण भी होता रहा है. अब ये जो अनुपम गंध मैंने आत्मा में जो सुख है उसको लेने के लिए मैं आपको पास आया हूं, यानी जो नए धूप चढ़ाते हैं उस पर ये पद की रचना. की है, शायद युगल जी की रचना है। जब प्रत्येक पर्याय क्रमबद्ध है तो जीव को धर्म की ओर लगने के जिनवाने में क्यों उपदेश दिया गया है। जब भी उसके पर्याय क्रम में आएंगे धर्म लग जाएगा। अच्छा, तो ये क्रमबद्ध पर्यायों का विषय जो है सही ढंग से समझना जरूरी है। न्याय पर्यायाश्रित होने पर भी उसमें सिर्फ पर्याय का अवलंबन लेने का वहां अभिप्राय नहीं होना चाहिए। धर्म के विषय में ये तर्क उठता है तो जब अपने क्रम में धर्म के पर्याय आने वाले होंगे तब आएंगे। धार्मिक पर्याय पर भी उदासीनता लाने हो तो फिर उपेक्षा कहाँ रख के लाए हो, ये हमारा सवाल है। कहीं न कहीं तो आप अपेक्षा करोगे ही। जब अपने पर्याय से भी उदासीनता लाने हैं तो अपने प्रभु में अपेक्षा रख करके लाओगे या और कहीं जगह जाओगे? और एक धर्म की पर्याय पर ही उदासीनता लाने हैं या हमारे विवेक के सभी प्रकार में यही न्याय लागू करना है? पानी की तृषा लगे उस वक्त पाने के आने की क्रम की पर्याय को पकड़ना आएगा। जब पानी पिएंगे हम, अभी तो हमें हमारे क्रम में तो पर्याय नहीं है तो अभी तो पानी नहीं मिल रहा है, भूख लगे तो वैसा विचार करना करते हो क्या? वहां को जरूरत लगे तो क्रमबद्ध पर्याय कहीं न कहीं पड़ी रहती है हमारी समझ में, गायब हो जाती है समझने से। और धर्म का जो सामने बात आती है तो क्रमबद्ध पर्याय हमारे आगे हो जाती है। ये कोई न्याय का विषय है? ये तो सरासर अन्याय है। ये क्रमबद्ध पर्याय का विषय गुरुदेव ने इस तरह फरमाया है कि मैं ज्ञायक स्वरूप आत्मा हूं। ज्ञायक में स्थिर रहने से सिर्फ हमारी दृष्टि पर्याय की चिंता नहीं करती है, हमें कोई पर्याय की चिंता नहीं होती है, क्योंकि मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूं। मेरा सर्वस्व मेरे ज्ञायक परमात्मा में है। सिर्फ मुझे मेरी पर्याय की चिंता नहीं है तो फिर पर्याय के विषयभूत अन्य पदार्थों की तो चिंता होने का सवाल ही नहीं है। ऐसा जोर से स्वरूप में स्थिर होकर के एक पर्याय से लेकर के किसी भी अन्य पदार्थ के परिणाम का या विकारी भाव का एकरता हो जाए और मात्र ज्ञाता रह जाए, इसी संदर्भ में ये न्याय को प्रकाशित किया है। इसमें अवलंबन होता है ज्ञायक का और पर्याय की क्रमबद्धता का ज्ञान होता है। जबकि हम बात यथार्थ रूप से नहीं समझते हैं तो पर्याय की क्रमबद्धता का अवलंबन ले लेते हैं और न्याय के विषय में शून्य हो जाते हैं। तो जिस हेतु से, जिस दृष्टिकोण से ये बात का प्रतिपादन किया है वो प्रतिपादन ही हमने नहीं समझे हैं तो बात हमारे नुकसान की हो जाती है। ये पर्याय का आलंबन लेने का विषय नहीं है, सिर्फ पर्याय के क्रमों का ज्ञान करने के का ये न्याय है। सम्यक प्राप्त करने वाले जीव की पात्रता कैसी होती है, प्रारंभिक भूमिका क्या है। सम्मत प्राप्त करने वाले जीव के पात्रता के अनेक स्तर है, विभिन्न स्तर से वो आगे बढ़ता है और आखिर में सम्यक सम्मुख होता है। तो हम दर्शन भाव के उत्सम को सम्यक दर्शन, उत्सम सम्यक दर्शन कहते हैं। सभी प्रकार की भाव भाव में एक दर्शन हो एक ऐसा परिणाम है कि जिसमें आत्मा पूरा के पूरा भ्रमित होकर के संसार में परिभ्रमण करने लग जाता है। दर्शन वो महायोद्धा है, जैसे कल बात चली थी कि तीन लोक पर उसका साम्राज्य चल रहा है, तो उसको पहले कमजोर किया जाता है। दर्शन का अनुभाग कटने पर ही स्वरूप निश्चय होता है और दर्शन का उपशम मैंने अभाव होकर के ही सम्यक दर्शन होता है। ऐसे दो प्रकार दर्शन के विषय में बनते हैं। तो जहां दर्शन का अनुभाग करता है यानी दर्शन की शक्ति का टूटना होता है, वो किस किस प्रकार से होए इसका सुव्यवस्थित ज्ञान हमें होना चाहिए कि दर्शन का अनुभाग कैसे मिटे। इसके लिए अनेक स्तर है, इसके अनेक भंग भेद है और इसी दृष्टिकोण से हमने एक आर्टिकल लिखा है प्रयोजन सिद्धि नाम का। प्रयोजन सिद्धि में हमें बात ली है कि जो भी मुमुक्षु है उसको भी मुमुक्षुता के योग्य क्रिया करने पर भी अगर सही रूप से वो नहीं करता है तो दर्शन तीव्र भी होता है और सही रूप से करने पर दर्शन मंद भी होता है। उसमें अनेक भंग भेद लिए हैं, विस्तार से उस विषय को स्थापित किया है वहां। लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में अगर हम विचार करें तो सबसे प्रथम दर्शन का अनुभव तोड़ने में कोई हमें प्राथमिक कार्य करना हो तो हमें पूर्णता का लक्ष्य कर लेना चाहिए, क्योंकि सारे संसार के सुख को वहां तिलांजलि हम देते हैं। संसार के किसी भी प्रकार के सुख की आशा और अपेक्षाएं हमें नहीं है, तभी यह लक्ष्य होता है। और उस वक्त दर्शन हो यथार्थता से मंदता को प्राप्त होता है। इस लक्ष्य के साथ जो स्वरूप प्राप्ति थी तीव्र भावना हो जाती है, शीघ्र तुम्हारा स्वरूप प्राप्ति का भाव जोर से आता है, उतना फोर्स आता है तो दर्शन में अधिक मंद होता है। इस भावना के अनुसार हमारा मूल स्वरूप त्रिकाली स्वरूप का खूब अंतर खूब जिज्ञासा से चलती है और ये अपूर्व जिज्ञासा में हमारे सभी निभाव रस फीके हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो दर्शन में अधिक मंद होता है। फिर इसको मारते ही जाओ ऐसे निरस्त परिणामों से उदयना चलो और अंतर खुद चालू रखने में अपने परिणाम का अवलोकन करो। चलते हुए परिणाम का अवलोकन करने से हमारे ज्ञान से हमारे स्वभाव जाति की परखाएं, विभाव का निषेधाएं और भेद ज्ञान का प्रयोग चालू हो गए। विकल्प नहीं, विचार नहीं, किंतु भेद ज्ञान का प्रयोग चालू हो जाए तो इस प्रयोग के दौरान दर्शन अधिक मंद हो जाएगा। सबसे अधिक मंद होने की इसकी जो कोई स्टेज है या वो है कि ऐसे विज्ञान के प्रयोग के कारण से आत्मस्वरूप का निश्चय होता है, पहचान होती है। जितना अनंत महिमानंत आत्मा है उतने के उतना ज्ञान में सीधा भी डायरेक्ट प्रतिभाषित होता है। राग होते हुए भी राग से उपेक्षित होकर के और ज्ञान लक्षण के आधार से यानी स्वभाव के आधार से स्वभाव का प्रतिभास होता है या वेदन अभूत लक्षण से स्वभाव का प्रतिभास होता है तो उसमें जो दर्शन वो मंद होता है, वो इतना मंद होता है कि उत्संकीर्ण होने की योग्यता वहां संप्राप्त होती है। फिर तो ये अनंत महिमांत आत्मस्वरूप की महिमा इतनी उम्र पड़ेगी और ज्ञान भी इतना तीव्र हो जाएगा कि मैं ऐसा ही अनंत अनंत सामर्थ्य का धनी हूं तो उस महिमा और सम्यक सन्मुख के पुरुषार्थ से एक अवसर ऐसा आएगा कि निर्विकल्प तत्व में उतना रस आएगा, उतना रस आएगा कि विकल्प स्वयं ही शांत होकर के निर्विकल्प दशा उस रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। उस तरह से पात्रता में प्रारंभ से लेकर अगर कोई जीव व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ता है तो सम्यक दर्शन अवश्य उसको प्राप्त होता है, वहां वो पहुंच ही जाता है। उसमें कोई होने या नहीं होने ऐसी कोई नॉन गारंटेड बात नहीं है, एकदम गारंटेड बात है। अगर इस ढंग से वो दर्शन को अधिक से अधिक मन करते जाता है तो ये निर्बल होकर के उत्सव होता है। बलवान वह है लेकिन जब इसकी ताकत टूटती है तो उसको दबना पड़ता है, उसको दबाना यही उत्सव है। अच्छा, इस विषय में कोई खास इस विषय प्रश्न है तो और स्पष्ट कर दें वरना आपके दूसरे प्रश्न पर जाए, दूसरे प्रश्न पर जा रहे हैं। स्वरूप समझे बिना अथवा जो स्वयं करता है वो पदार्थ से यथार्थ है कि नहीं, यथार्थ स्वरूप समझे बिना जो स्वयं कहता है वो परमार्थ से यथार्थ है कि नहीं ये जाने बिना जो वक्ता होता है वो अनंत संसार बढ़ाता है। श्रीमद् जी का वचनामृत है। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए सौराष्ट्र में, एक महान आत्मज्ञानी हुए श्रीमद् राजचंद्र करके, पूरे भव के बड़े आराधक थे। इस भाव में भी उन्होंने एक अवतारी पड़ा होने का पुरुषार्थ किया है, इसका ये वचन है। फिर से दोहराता हूं, यथार्थ स्वरूप संबंधी बिना अथवा जो स्वयं कहता है वह यथार्थ से परमार्थ से यथार्थ है कि नहीं है ये जाने बिना या ऐसा संबंधी बिना जो वक्ता होता है वह अनंत संसार बढ़ाता है। इसलिए जब तक यह समझने की शक्ति न हो तब तक मौन रहना अच्छा है। लेकिन ये स्थिति नहीं बनी और प्रवचन आदि करने का अवसर आता है, क्या कार्य किया जाए स्पष्ट करिए। ठीक बात है, श्रीमद जी ने किसी भी वक्ता के लिए बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है और उन्होंने उस मार्गदर्शन पर स्पष्टीकरण भी दिया है, तो संक्षेप में मैं बताऊंगा कि यथार्थ स्वरूप हम समझे नहीं हूं। हम कहते हैं वो परमार्थ रूप परमार्थ दृष्टिकोण से यथार्थ है या नहीं हम जानते नहीं, तो हो सके वहां तक तो वक्ता के जगह आना ही नहीं, वक्ता होना ही नहीं, हो सके वहां तक कम से कम निर्णय तो होना ही चाहिए। यथार्थ निर्णय की भूमिका आती है जिसको सम्यक सम्मुखता में आती है, जो पहले हमने दसमोह के प्रकरण में बताया, उसमें स्वरूप निश्चय ज्ञान के विलंबित लक्षण से होता है, सुबह यथार्थता आ जाती है। तो उससे पहले हो सके वहां तक तो वक्ता होना ही नहीं चाहिए, फिर भी कोई उदय ऐसा हो तो वक्ता नहीं हो करके उपदेशक नहीं बन करके सत्संग करना, संग विचार वाले संहेतु वाले समझे वाले एक ही देव वाले समी मार्ग पर चलने और चलने के अभिप्राय वाले देवों के साथ बैठ करके स्वाध्याय सत्संग करना, लेकिन उद्देश्य के रूप में उद्देश्य नहीं देना। क्यों? कि ये अधिकार तो छठे के स्थान से ही प्राप्त होता है, इसके पहले तो प्राप्त होता ही नहीं, तो उद्देश्य तो हमें नहीं बनना है कभी भी। अब वक्ता का सवाल नहीं रहता है, फिर भी इससे भी कोई सरल मार्गदर्शन उन्होंने दिया है तो वो दिया है कि अगर ऐसा प्रसंग हो तुम्हें कि दूसरे तो सुनते हैं और हमको बोलना है, ऐसा कोई प्रसंग हो तो उसमें ऐसा ही वक्ता सुनता जैसा एक ढंग बन जाता है, इसके लिए क्या करें। तो उन्होंने ये मार्गदर्शन दिया है कि ऐसे प्रसंग में सत्पुरुष का गुणग्रहण करना, ज्ञानी पुरुष की स्तुति भक्ति आदि करना, उसकी दशा की महिमा करना, वो कैसे अंतर परिणाम करते हैं उसको उसके चरित्र को देख करके समझ करके उसी विषय में अपने जो भाव है वो तो विशेष रूप से बहुमान वाले हो ऐसा करना। ग्रंथ नहीं लाए हैं पर आपको बता देते काफी लिखा है इस विषय में, तो ऐसा करने से दर्शन में बंद होता है, जो सत्पुरुष के ज्ञानी पुरुष के बहुमान पूर्वक गुणगान करता है वो दर्शन को तोड़ता है समुद्र ज्ञानी पुरुष का अवरणलाभ करता है या कराता है या करने वाले का अनुमोदन करता है, वो दर्शनों को यानी अनंत संसार को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे प्रश्न में किस तरह से चलना, देखो ज्ञानी क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं बात में है, ज्ञानी क्या कहते हैं, इनका मार्ग कैसा है, वो कैसे चलते हैं, किस तरह से है? तो प्रवचन करने का सवाल नहीं रहता है, सत्संग करने का सवाल रहता है इसमें, और उसमें विचार का आदान प्रदान करें। हम कहीं अभी सच्चा है वो बाद में रखे, विचारों का आदान प्रदान करें, मध्यस्थ बुद्धि रखे, तो किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं हो जाएगा। वीर गुरु शास्त्र और ज्ञानी पुरुष तीनों की भक्ति करने से मोह अभाव रहित स्थान है, मोह का अभाव करने का एक आयतन है। उस दृष्टिकोण से उसकी भक्ति करने से और संज्ञा से तो उतना नहीं लाभ होता है, कुछ पहचान करके करे तो अवश्य दर्शन वो मंद होता ही है। प्रक्रिया नहीं है, आप अकेले शुभ भाव को ही क्या देखते हैं, उस वक्त में ज्ञान के परिणाम है तो कैसे उनको नहीं भी क्यों देखते हैं, क्या राग ही मुख्य है, ज्ञान कुछ चीज ही नहीं है आपकी नजर में, हाँ ऐसा क्यों? उसमें सात सौ के करीब के अंक में है, वो सात सौ के करीब अगल बगल के अंक में है। ये बात का निर्देश किया है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न होता हो तो कैसे स्वाध्याय करना, इसका बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया है। के गोलन में पर्याय मात्र गुण मात्र में ऐसा कहने बाद में द्रव्य मात्र में ऐसा कहा है, द्रव्य मात्र में ये भी समझ में नहीं आता, कृपया स्पष्ट करे। किस नंबर का भी जो पीस बोल है इसमें विष्ण, हाँ तो विष्ण में यह कहना चाहते हैं कि जो शुद्ध पर्याय है यह आत्मा है। क्या पृथ्वी ज्ञान का कारण ऐसा द्रव्य सामान तो जिसको नहीं है, उसे जो आलिंगित नहीं है, ऐसी जो शुद्ध पर्याय वही आत्मा है, ऐसा बीस नंबर का बोल ऐसा इस तरह से चला है। तो इसका मतलब क्या है कि वेदन के हिसाब से स्वानुभव के हिसाब से वेदन की मुख्यता है, त्रिकाली की नहीं। इसके लिए परमागम सार में गुरुदेव श्री का 514 नंबर का और 544 नंबर के दो वचनामृत हैं। लक्ष्य के हिसाब से त्रिकाली की मुख्यता है, आश्रय करने के हिसाब से त्रिकाली की मुख्यता है, लेकिन वेदन करने के हिसाब से त्रिकाली की मुख्यता इसलिए नहीं है कि वेदन त्रिकाली में होता नहीं, वेदन वर्तमान पर्याय में शुद्ध पर्याय में होता है आनंद का, से जितना आनंद आया उतना मुझे लाभ हुआ, मुझे लाभ कितना हुआ, जितना आनंद होगा उतना दृष्टांत लेंगे। शेष के पास कर्मों की संपत्ति है, लेकिन उसकी कितनी कि जितनी होगी उतने बाकी थोड़ी रह जाएगी। जो जो इसमें भोगी नहीं किया तो इसमें वो लक्ष्मी क्या काम थी, हम तो बेकार पड़ी रही। ऐसे शुद्ध परिवार में जो आनंद का जो जगाता है वही आत्मा है, उतना ही आत्मा है। क्यों ऐसा कहने की क्यों जरूरत पड़ी? जो 19 दिन चल गए तो भगवान अमृतचंद्र आचार्य को विष्णा दिन लिखने की जरूरत क्या थी? ऐसा परिवार के लिए लिख दिया, अपने ग्रह को बंद कर दिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि द्रव्य की मुख्यता को महान होने से, परिवार से द्रव्य महान होने से शास्त्र में ग्रंथ ग्रंथ को बात गाई है। वहां भी आता है, लेकिन है तो सही नहीं है, सो बात नहीं है। ऐसी बात जो द्रव्य है वो तो अव्यक्त है, उसका तो आविर्भाव पूर्वभाव का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। द्रव्य तो जहां जैसा है वहां वैसा है, प्रगत अप्रगत आविर्भाव तिरोभाव की पर्याय के भेद है। द्रव्य तो जैसा है वैसा है, द्रव्य में तो कोई जब ये अवधिक है यानी एक रूप है तो उसमें आविर्भाव तिरोभाव प्रगत अप्रगत कैसे हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो फेरफार होता है परिवार में होता है, द्रव्य में तो फेरफार होता नहीं कि तो एक रूप त्रिकाल सामान्य है, इसलिए उसका तिरुभूत होने का सवाल नहीं होता है। अब तो 5 प्रश्न है आपके, कितना समय हुआ देख लीजिए जरा। कितने 5 मिनट है, 5 मिनट में तो प्रश्न 5 प्रश्न कैसे आएंगे? और भी देवीलाल जी साहब के हैं, चार गाथा 39-37 आत्मा और ज्ञान में भिन्न लक्षण नहीं होना कहा, क्योंकि आत्मा ध्रुव है और ज्ञान का लक्षण प्रतिभास है, तो भिन्न लक्षण नहीं होने का क्या अर्थ है? आत्मा का लक्षण प्रतिभास है वो वहां लिखा है क्या? जब आपने ये निकाला 70-70 में तो आत्मा का लक्षण प्रतिभास है वहां लिखा है क्या कि नहीं लिखा है? वो आपने निकाला है आत्मा का लक्षण, लक्ष्य लक्षण की चर्चा में ससंवेदन लिया है, मान लिया है कि प्रगति ज्ञानम ज्ञान मात्र से ससंवेदन सिद्धत्वात्, ऐसा करके लिखा है। प्रगट ही ज्ञान, ज्ञान तो प्रगट है किस अपेक्षा से? प्रतिभास की अपेक्षा से प्रगट नहीं है, ससंवेदन की अपेक्षा से उसकी प्राप्ति है। लक्षण की लक्षण में लक्ष्य की प्राप्ति ससंवेदन की अपेक्षा से है। ससंवेदन माने क्या? यहाँ निर्विकल्प अनुभूति की बात नहीं चलिए, शुद्ध अनुभूति की बात वहां नहीं चलिए, वहां पहचान का प्रकरण चलता है। तो वहां पहचान के बाद जब चलिए लक्षण से लक्ष्य को पहचाना जाए, निर्धारित किया जाए, तो वहां जो ज्ञान का ज्ञान में वेदन है उसी को संवेदन कहते हैं, और ये श्रोतने से मालूम पड़े तो उसको ससंवेदन कहते हैं। उसी तरह से उसकी पहचान होती है। फिर से कि हमारे ज्ञान में जो ज्ञान भोजन चल रहा है सामान्य ज्ञान है, वो उस ज्ञान सामान्य में जो ज्ञान भोजन चलता ही रहता है, आवाज गोपाल सभी को निरंतर सदा ही अनुभव में आ रहा है। अगर वो आविर्भूत होकर के वेदन संवेदन को संप्राप्त हो और ये संवेदन में स्वपना आ जाए, अपने रूप से मालूम पड़े जान वेदन में आए, तो जो त्रिकाली आत्मा ध्रुव आत्मा है उसका स्वतः आश्रय हो जाता है। इसलिए मां भिन्न लक्षण नहीं है, क्या ज्ञान में और आत्मा में कोई भिन्न लक्षण है ही नहीं। द्रव्य पने से दोनों अभेद है। जहां द्रव्य पने से अभेदता है, ऐसी एक अध्यात्म प्रकरण की चर्चा चल रही हो, वहां आगम का द्रव्य पर्याय का भेद ज्ञान में विचार में लेना अपराध है। ये नहीं करना है, वहां ये भूलवा नहीं करनी है। हमारा द्रव्य पर्याय वाला ज्ञान वहां नहीं लगाना है। वहां तो जो पर्याय है, लक्षण है, वो लक्ष्य से भिन्न है कि अभिन्न है? क्योंकि अभिन्न है। कैसे? कि द्रव्यपने से अभिन्न है। अब पढ़ लेना, वही चर्चा में अगला प्रश्न वही है। स्वसंवेदन का जो उत्तर दिया है, इसके पहले जो प्रश्न उत्तर चला है समय सार परिशिष्ट में, वहां प्रश्न उठाया है खुद आचार्य भगवान ने कि लक्षण से लक्ष्य भिन्न है। ऐसा कौन सा लक्ष्य भिन्न है जो लक्षण से जाना जाता है? ऐसा करके प्रश्न उठाया कि नहीं, लक्षण से लक्ष्य भिन्न नहीं है, द्रव्यपण से दोनों अभेद है। और द्रव्यपण से दोनों कैसे अभेद है, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो क्या ज्ञान के वेदन भूत पर्याय में अनुभव स्वरूप जो स्वभाव है वो प्रकट नहीं है क्या? फिर से अजीत भाई, ज्ञान के वेदन भूत लक्षण में अनुभव स्वरूप जो स्वभाव है वो नहीं है क्या? कहे वहां अनुभव स्वरूप जो द्रव्य में है, जो गुण में है, वो पर्याय में भी है, अखंड तीनों में है, कहीं भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद उसमें देखा जाता नहीं है। इसलिए इस अनुभूति रूप वेदन में भगवान आत्मा को स्थापित किया है। 17-18 गाथा के टीका में अनुभूति को पर्याय नहीं कहा, आत्मा कहा है। पर्याय को आत्मा कहने का जो शैली है, अध्यात्म शैली है, उसमें किस प्रकार से ये विधि की, वहां प्रयोगात्मक विधि की चर्चा किस प्रकार से होती है, उसकी गहराई को वहां देखना है। का या सत्ता का या अस्तित्व का ग्रहण कहां से होता है, कैसे होता है, ये सवाल है, एक विचार है। अब तो ग्रहण करना है कि निज अस्तित्व का ग्रहण ज्ञान वेदन के अलावा हो ही सकता नहीं है, वहां भी वही बात आएगी। जो अस्तित्व ग्रहण जिसको कहते हैं, जिसको स्वरूप का निश्चय कहते हैं, लक्ष्य लक्षण से जिसको स्वरूप का पहचान कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, वो तो वेदन से आता है। इसलिए वहां वेदन को स्थापित किया है कि बिना ज्ञान वेदन अपना अस्तित्व अनुभव में आता नहीं है। मैं हूं, मेरी मौजूदगी है, मौजूदगी कहां से ग्रहण होती है, तो ज्ञान वेदन से ही ग्रहण होती है, अन्यथा ग्रहण नहीं होती है। वहां भी वही बात घूम घूम फिर अगली चर्चा में लेंगे, इतने पेंडिंग है रख लीजिए आपके पास।
Yeah.